श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों भजन संहिता नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने भजनकार के द्वारा बहुत सारे अद्भुत बातों को सीखा है और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं क्योंकि प्रभु सचमुच में आप इसके योग्य हैं। आज जब हम आपके वचन से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक से बोले और बातचीत करें, हमें सिखाएं, समझाएं, हमें तैयार करें, हमें सुधारें, ताकि प्रभु हम आपके डर भय में अपने जीवन को बिता सकें। हर एक बुराइयों से आप हमें छुटकारा दें। हमारे विनती प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं। पिताजी, आप उन्हें अपनी शांति प्रदान कीजिए। इस समय हम सब अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और भजन संहिता 34 से हम आज के अध्ययन को आरंभ करेंगे। आज का विषय है मुक्ति का स्तुतिगान। इस भजन की व्याख्या प्रेरित वचन का ही भाग है। दाऊद का भजन, जब वह अबीमेलेक के सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वह चला गया। इस संदर्भ से मुझे अति उत्तम अवसर भी मिलता है कि परमेश्वर के वचन की अवमानना करने वाले आलोचकों को वह कुछ दिखाऊं, क्योंकि उनके कारण अनेक अज्ञानी विश्वासी वचन की समग्रता और इसकी अचूक प्रकृति पर विश्वास नहीं करते। मेरे मित्रों, इस भजन का परिदृश्य दाऊद के जीवन की एक घटना है। आपको स्मरण होगा कि शाऊल राजा दाऊद की जान के पीछे पड़ा हुआ था। परिणाम स्वरूप दाऊद जान बचाकर भागा और गुफाओं में जा छिपा। वह मृत सागर के क्षेत्र की गुफाएं थी जहां मनुष्य का जीवित रहना अत्यधिक कठिन था। मैं वहां से निकले हुए कई लोगों को जानता हूं जो इस क्षेत्र में घूमने के लिए गए थे। निश्चय ही वहां अकेला जाना बहुत कठिन बात है। दाऊद वहां जीवित तो रहा परंतु अत्यधिक दुर्बल हो गया था। उसका विश्वास भी डगमगाने लगा था। अतः वह पश्चिम की ओर पलिस्तियों के देश में चला जाता है क्योंकि वह डर रहा था कि मर ना जाए। पलिस्तियों के राजा ने दाऊद का सत्कार किया परंतु उसके सलाहकारों ने उसे दाऊद पर विश्वास नहीं किया। पहला शामुएल की पुस्तक 21 अध्याय उसके 11 और 12 पद के अनुसार अकीस के कर्मचारियों ने अकीस से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते गाते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा अकीस से अत्यंत डर गया। दाऊद समझ गया था कि वह बैरी के क्षेत्र में जान का जोखिम उठा रहा था। अतः वह पागल सा व्यवहार करने लगा। राजा एक पागल व्यक्ति को अपने समक्ष देखकर रुष्ट हुआ और दाऊद को बाहर निकलवा दिया। इस प्रकार दाऊद उस समय बच गया और वहां से निकलकर दाऊद फिर से इसराइल के जंगलों में गुफाओं में छिपा हुआ रहा। और मेरे विचार में वह सोच रहा था कि उसे परमेश्वर पर भरोसा रखना था। मेरे प्रियो, अब यदि आप पहला शामुएल की पुस्तक 21 अध्याय में पढ़ें तो गत के राजा का नाम आकीश था, परंतु भजन संहिता 34 में उसका नाम अभिमेलेक लिखा है। आलोचक इस विषमता के कारण कहते हैं कि यह भजन प्रत्यक्षता प्रेरित वचन नहीं है और बाइबल में चूक है। आलोचकों की समस्या वास्तव में यह है कि वे उसी भाग को चुनते हैं जिसे वे चाहते हैं, और सच तो यह है कि अभिमेलेक राजा की पदवी होता था, जैसे फिरौन मिस्र में राजा को कहते थे। जब मैं बाइबल स्कूल में पढ़ रहा था तब एक विद्यार्थी ने इसी विषय पर मुझसे भी पूछा और कहा कि वचन के प्रेरित होने पर विश्वास करता है, परंतु यहाँ तो वास्तव में बाइबल की चूक है। वह वास्तव में अज्ञानी था। जी हाँ, यदि आप यह सोचे कि आपको बाइबल की चूक मिल गई है, तो सच तो यह है कि बाइबल तो सही है परंतु आपके ज्ञान में कमी है, अर्थात आपके ज्ञान की कमी की समस्या है। आज आलोचकों की भी यही समस्या है। इस भजन के अध्ययन में दाऊद के अनुभवों को हम ध्यान में रखते हुए देखें। आइए हम भजन संहिता 34 उसके एक पद को पढ़ें। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे मित्रों, समस्याओं से घिर जाने पर आपको निराशा और पराजय का बोध होता होगा। दाऊद को भी तो होता था। वह भागता रहा और ऐसा प्रतीत होता है कि अंत कहीं नहीं है। वह हताश हो गया, निराश हो गया था। वह सोचने लगा, एक दिन मैं अवश्य मारा जाऊंगा। परंतु उसने फिर भी कहा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मेरे प्रियो, जब सब सही हो और दिन सुहाना हो तो मैं परमेश्वर को धन्य कहता हूं, परंतु जब संकट के बादल छा जाते हैं तब उसे धन्य कहना आसान नहीं होता है। परंतु दाऊद ने तब भी कहा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। भजन संहिता 34 के दो पद में लिखा है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। यहाँ पर दाऊद का स्वभाव परमेश्वर की गवाही था। आगे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 34 उसके तीन पद में, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने इस पद को अपने पत्रों पर छापना चाहा था कि आप भी मेरे साथ यहोवा पर घमंड करें। हम एक भजन को देखेंगे कि यहोवा का नाम और परमेश्वर का वचन एक ही है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहते हैं कि उसके नाम की बड़ाई हो। मैं भजनकार के साथ कहना चाहता हूं, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आज परमेश्वर के वचन के प्रचार के द्वारा, मेरे प्रियो, प्रथम तीन पद केवल स्तुति गान है, हल्लेलुया के गान। अब वह उसकी स्तुति के कारण को समझाता है, तो आइए हम पढ़ें भजन संहिता 34 उसके चार पद में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। ध्यान दीजिए, जो बहुत ही अद्भुत बात है। आगे लिखा है भजन संहिता 34 उसके 5 और 6 पद में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। परमेश्वर द्वारा दिलाई गई मुक्ति के लिए दाऊद कैसा आभारी है। मेरे मित्रों, मैं परमेश्वर द्वारा दिए गए पथ प्रदर्शन के लिए उसे धन्यवाद कहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी उसे अवश्य ही धन्यवाद चढ़ाते हैं। भजन संहिता 34 के 7 पद में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। इस भजन में 3 बार परमेश्वर के स्वर्गदूत का उल्लेख है। भजन संहिता 34 उसके 7 पद में, 35 उसके 5 और 6 पद में भी स्वर्गदूत का उल्लेख है और अन्य किसी भजन में नहीं है। मैं इसकी विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा, परंतु मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यह देह धारण से पूर्व का प्रभु यीशु है। आप नए नियम में स्वर्गदूत का उल्लेख नहीं पाएंगे क्योंकि प्रभु यीशु अब एक मनुष्य रूप में है। पुराने नियम में उसका प्रगटीकरण स्वर्गदूत के रूप में होता था। इस भजन में भजनकार कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। इब्रानियों के पत्र 13 अध्याय उसके 5 पद में प्रभु यीशु कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 20 पद में वह कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं, आमीन। अब दाऊद निमंत्रण देता है भजन संहिता 34 उसके 8 पद में, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मेरे मित्रों, दाऊद कहता है कि यदि आपको उसकी बात पर विश्वास ना हो तो स्वयं परमेश्वर को परख करके देखो। लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। इसके तुल्य और कुछ भी नहीं। आपके सामने में परमेश्वर का निमंत्रण है। शाऊल एक लंबे समय तक दाऊद की खोज में था और दाऊद गुफा में छिपा रहा। वह एक कठोर मनुष्य बन गया था। उसने निम्न पद में व्यक्त सब कुछ को देखा था। भजन संहिता 34:10 में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। दाऊद ने शेर के बच्चों को भोजन के लिए कू कू करते हुए सुना था। उसने यह भी देखा था कि परमेश्वर के खोजियों को भोजन की कमी नहीं थी, भली वस्तुओं की घटी नहीं थी। यदि शेरनी अपने बच्चों को संभाल सकती है तो निश्चय ही परमेश्वर आपको और मुझे संभाल सकता है जो उसके बच्चे हैं। दाऊद ने अनुभव से यह सब सीखा था। यह व्यवहारिक विश्वास है जो हमारे लिए अति आवश्यक है। मैं तो रविवार की सुबह के विश्वास से ऊब गया हूँ। लोग आराधना में आते हैं, गीत गाते हैं, उपदेश सुनते हैं, महिमा गान गाते हैं और बस इतना ही। अधिकांश विश्वासियों के लिए बस यही है। किसी ने एक अति उत्तम बात कही है, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आप दाग लगे कांच के पीछे से कुछ कह रहे हैं। इस उक्ति के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। धूमिल कांच की खिड़की के पीछे से कुछ कहने में बुराई नहीं है। मैंने भी अपनी सेवकाई के 20 वर्षों में ऐसा ही किया, परंतु मैं अधिक उचित समझता हूं कि बाजार से, कक्षा में, कार्यालय से, कारखाने से आवाज आती प्रतीत हो। दाऊद ने परमेश्वर की सुधि का अनुभव पाया था। वह जानता था कि यह सब कुछ सच है। जी हाँ, वह अपने बच्चों का ख्याल रखता है। भजन संहिता 34 उसके 13 पद में लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। मुझे यह सीखने की आवश्यकता है और हो सकता है कि आपको भी इसकी जरूरत है। भजन संहिता 34:15 में आगे लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, परंतु शायद वह नहीं जो आप चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी उसका उत्तर, उसका जवाब नहीं में होता है। भजन संहिता 34:16 में लिखा है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। नाटकों में प्रायः दिखाया जाता है कि एक पापी अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर पाप का जीवन जी रहा है। संभवतः वह चोर या हत्यारा है, परंतु एक दिन वह घर आता है और देखता है कि उसका बच्चा बीमार है। वह बच्चे की सहया के पास जाता है, घुटने टेकर के प्रार्थना करता है। दर्शकों की सिसकियां सुनाई देती है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मुझे हंसी आती है। आप जानते हैं क्यों? परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे मनुष्य की प्रार्थना नहीं सुनता। ऐसे मनुष्य को उद्धार के अतिरिक्त कुछ भी मांगने का अधिकार नहीं है। उससे क्षमा मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षमा दान तो परमेश्वर कर चुका है। अब उसे जो करना है वह मात्र यह है कि पापों का अंगीकार करे, अपने गलतियों को मान ले और प्रभु यीशु में मुक्ति दाता होने का विश्वास करे। प्रेरितों के काम 16:31 उसके 31 पद में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा वचन पाया जाता है। भजन संहिता 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। मेरे मित्रों, यदि मनुष्य दीन होकर प्रभु यीशु के पास पापी होकर आए तथा उसमें विश्वास करे तो प्रभु यीशु निकट आएगा। यदि वह पापी जो अपने बच्चे की रोग शय्या के निकट प्रार्थना कर रहा था अपने पापों को मानकर यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करे तो परमेश्वर उसके बच्चे के लिए उसकी प्रार्थना अवश्य ही सुनेगा। परमेश्वर हताश मन वालों के निकट रहता है। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं भजन संहिता 34 उसके 22 पद में, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। चाहे कोई क्यों ना हो वह कष्टों से मुक्त नहीं है, परंतु परमेश्वर की संतान परमेश्वर के उद्धार की प्रतीक्षा करती है। ओह, वह कैसा भला है। आइए हम दाऊद की नाई उसे सदा धन्य कहें। मित्रों, यहाँ पर भजन संहिता 34 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 35 में हम देखेंगे जिसका विषय है शत्रुओं से मुक्ति दिलाने की विनती। दाऊद ने यह भजन उस समय लिखा था जिस समय राजा शाउल उसे सता रहा था। इस भजन की पृष्ठभूमि संभवतः पहले शामुएल की पुस्तक 24 अध्याय में है। यह धर्मी परमेश्वर से की गई दाऊद की प्रभावी प्रार्थना है जिसमें वह परमेश्वर से अनुरोध करता है कि वह उसके शत्रुओं और उसके धर्मी जनों के सताने वालों को दंड दे। कुछ विश्वासियों का मानना है कि यह एक मसीही विश्वासी की प्रार्थना नहीं है। प्रभु यीशु ने भी ऐसा नहीं सिखाया, परंतु प्रभु यीशु ने एक विधवा का दृष्टांत सुनाया था कि वह एक अधर्मी न्यायी के पास बार बार जाकर न्याय पाती है। यह एक तुलनात्मक दृष्टांत है। परमेश्वर भावना रहित कठोर न्यायी नहीं है। परमेश्वर तो अनुग्रहकारी, अद्भुत और अपनी संतान की सहायता को उत्सुक परमेश्वर है। हमें अपनी शिकायतें उसे सुनानी है। पौलुस विश्वासियों से प्रबोधन करता है रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 19 पद में, हे प्रियो बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। आपको और मुझको बदला नहीं लेना है, हमें परमेश्वर के हाथ में उसे छोड़ देना है। यह उसका विभाग है, वह आपसे और मुझसे अधिक अच्छा काम करेगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैंने अनेकों को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया है, जबकि मैं तो उनका मुंह तोड़ देना चाहता था, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूं। मुझे कभी कभी ऐसा बोध हुआ कि व्यर्थ समय गंवाने से कोई भी लाभ नहीं है। मैं एक ढोंगी को जानता हूं जो अपने बगल में बाइबल को लिए हुए घूमता फिरता है। परमेश्वर ने उसके बारे में मुझसे कहा, उस पर वार मत कर, यह उचित नहीं होगा, यह तेरा विश्वास का आचरण नहीं है। मुझ में विश्वास रख, बदला लेना मेरा काम है, मैं उसकी ताड़ना करूंगा। अतः मैंने उसे परमेश्वर को सौंप दिया कि दंड दे। हमें विश्वास के मार्ग पर चलना सीखना है। जी हाँ, इस भजन को लिखते समय दाऊद संकटों से घिरा हुआ था, वह शाउल से जान बचाकर भाग रहा था, परंतु शाउल को घात करने का अवसर हाथ लगने पर भी उसने उसे नहीं मारा। शाउल जान गया था कि दाऊद ने उसे जीवन दान दिया है और इसे हम पहला शामुएल के पुस्तक 24 अध्याय में पाते हैं। वह स्वीकार करता है कि परमेश्वर ने दाऊद को राज्य दे दिया है तथा दाऊद उससे बढ़कर धर्मी है, परंतु समझौता करके उसे घर लौटा लाने की अपेक्षा वह उसे बैरी ही मानता रहा। दाऊद की यह पश्चातापी प्रार्थना एक भविष्यवाणी भी है। दाऊद का उत्पीड़न महाक्लेश में इसराइल के कष्टों का प्रतिरूप है। धर्मी न्याय की पुकार का उत्तर यीशु फिर से आने पर देगा। जी हाँ, वह न्याय करेगा और परमेश्वर के चुने हुओं का उद्धार करेगा। भजन संहिता 35 उसके 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित और निरादर हों, जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो, वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हांकता जाए। देखिए, दाऊद परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहता था। यहाँ दूसरी बार परमेश्वर के दूत का उल्लेख किया गया है। पहली बार भजन संहिता 34 उसके 7 पद में किया गया था। मैं फिर से कहता हूं कि परमेश्वर का दूत देह धारण से पूर्व प्रभु यीशु मसीह था। वह उद्धार करता और न्याय करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 35 उसके 6-8 पद में लिखा है, उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए, क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गढ़े में बिछाया है, अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गढ़ा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। यह अतिवाद है, यह अभिशाप की प्रार्थना है। मेरे विचार में आज विश्वासी के लिए ऐसी प्रार्थना करना अनुचित नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको आदेश दिया है कि बदला लेना हम उस पर छोड़ दें। अब यदि आप यह सोचें कि परमेश्वर बुराई करने वालों को बदला नहीं देगा तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। वह बदले की भावना से नहीं, न्याय, धार्मिकता और पवित्रता के कारण बदला देगा। हमें अपना बदला परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। आज हम बहुत बड़ी भूल करते हैं कि हम स्वयं उस कार्य को करना चाहते हैं। वही है जो सब बातों को सही करेगा। यह एक अति उत्तम भजन है, मनुष्य की आत्मा के लिए महान सांत्वना और शांति है। भजन संहिता 35 उसके 9-10 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। जीवन के इस पल दाऊद एक कंगाल मनुष्य था। जब दाऊद देश से बाहर था तब उसके पास ऋण से दबे निराश असंतुष्ट जन आते थे। ये लोग उसके साथी हुए, उन्होंने उसके कठिन जीवन और कंगाली को बांटा, परंतु परमेश्वर उनके साथ था और उसने दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाया और लुटेरों से दीन दरिद्रों की रक्षा की। भजन संहिता 35 उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उन पाखंडी भाणों के समान जो पेट के लिए उपहास करते हैं वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, भाड़ वास्तव में उस युग में जोकर लोग होते थे जो भोज के समय अतिथियों के मनोरंजन के लिए किराए पर बुलाए जाते थे। यहां वे दाऊद को इसी प्रकार का जोकर कह रहे थे, क्योंकि वह शाऊल से दूर भाग रहा था और वे शायद उसका ठट्ठा और मजाक उड़ा रहे थे। उसने गोलियत को मारा परंतु शाऊल से डर कर भाग रहा है। आज हमारे चारों ओर भी ऐसे ही जोकर मजाक करने वाले हैं जिन्हें आप कलीसिया में देख सकते हैं। मैं लंबे समय से एक सेवक के रूप में कार्यरत हूं और मैंने उन्हें देखा है। अब क्योंकि मैं एक सेवक के रूप में हूं इसलिए मैं कहने योग्य बातें कहने से नहीं चूकूंगा। ये जोकर कलीसिया की गवाही को खराब करते हैं। कलीसिया प्रभु यीशु की दुल्हन है। कलीसिया के निमित्त परमेश्वर के पास अब भी एक योजना है, परंतु आवश्यक यह है कि कोई आंतरिक शोधन करे। हमें संसार का न्याय नहीं करना है, परंतु कलीसिया को भीतर से अवश्य ही जांचना है। जी हाँ, वहां ईश्वर भक्तों का ठट्ठा करने वाले हैं। वे ईश्वर भक्तों के विषय झूठी बातें बड़ी पवित्रता से फैलाते हैं। वे जोकर हैं, वे भाण हैं, वे परमेश्वर के दरबार के जोकर हैं जो भक्तों का ठट्ठा करते हैं। मेरे मित्रों, यह जानना उचित है कि धर्मी जन ठट्ठा सहन करते हैं, कष्ट भोगते हैं और बैरी उनके कष्टों से आनंदित होता है, परंतु अंत में उनका उद्धार होता है। धर्मी जन परमेश्वर के राज्य के भागी होंगे। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको भी जांचने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार का जीवन कलीसिया में व्यतीत कर रहे हैं। क्या हम भी उन जोकरों के समान हैं जो दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं या कलीसिया को बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज की इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में दाऊद के जीवन से अद्भुत बातों को सीखा है और अवश्य ही आपने इस बात को जान लिया है कि बदला लेना मेरा काम नहीं है परंतु यह परमेश्वर का है। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार।
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा।
तू क्यों करता मुझसे इतना।